भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। सुमान की शक्ति की भट्टी का आज 75वां दिन है। हम सभी अलग अलग तरीके से सुमान के विषय पर अलग अलग अनुभवी आत्माओं की अनुभव सुनते आ रहे हैं, और हर कोई अपनी क्षमता अनुसार उस स्थिति में स्थित होने का प्रयास करता है, उन शिक्षाओं को अपने आचरण में लाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब तक हमारा वास्तविक सम्मान जागृत नहीं होता है, तब तक जीवन में साधारणता ही बनी रहती है, पुरुषार्थ को गति नहीं मिलती है। जैसे हमें स्मृति आ जाती है, हम कौन हैं, कौन से कुल के हैं, हमारे वास्तविक गुण कौन से हैं, आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी अलौकिक शक्ति से भरपूर है, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि आदि संस्कार, जब इनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं तो जीवन साधारण ही व्यतीत होता रहता है। साधारणता से ऊपर उठने के लिए बाबा हमें रोज नए नए सम्मान देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए या वास्तविक जीवन का आनंद लेने के लिए, महसूसता करने के लिए सम्मान का चिंतन अति अनिवार्य है। जब तक हम सम्मान का चिंतन विस्तार से नहीं करते हैं, तब तक हमारे बदलाव की प्रक्रिया बहुत मंद गति से चलती है। इसलिए बाबा सबसे पहले हमें स्वयं पहला पाठ ही पक्का कराने के लिए बार बार हमको प्रेरित करते रहते हैं, अलग अलग युक्तियों के माध्यम से। कई दफ़ा साकार मूल्यों में सुनते सुनते अचानक फिर यही आता है, अच्छा अब सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। सारे जीवन का, ब्राह्मण जीवन का सार वास्तविक यही है, क्योंकि 5000 वर्ष के सफ़र में केवल ये छोटा सा संगम है जिसमें हम अपने को आत्मा समझते हैं। बाकी सभी युगों में आत्मा समझानी है, और न समझने से ही हमारा ये हश्र हुआ। गिरती कला में पहुँचते पहुँचते हम सभी एकदम वैल्यूलेस हो गए, एकदम मूल्य विहीन हो गए, अतिंद्रिय सुख से दूर हो गए, अनेक प्रकार के मायावी बंधनों में अपने आप को दुखी कर लिया। तो बाबा फिर से हमको बार बार सोमान की जागृति दिलाते हैं कि बच्चे सदा सुजाग रहो, जागरूक रहो, निरंतर तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला रहे। तो आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का सोमान है, मैं आत्मिक वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। अव्यक्त मूल्यों में भी आता है, जो कर्म आत्मिक वृत्ति से किया गया है वही पुण्य कर्म है। आत्मिक वृत्ति ही हमारी आत्मिक स्थिति को मजबूत करती है। जो कर्म शरीर समझकर हम करते हैं वो सभी पाप की श्रेणी में आता है। तो कितना ऊंचा पुरुषार्थ है हमारा कि निरंतर हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर कर्म करें, वो हमारी आत्मिक वृत्ति बनी रहे। हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं, लेकिन दूसरों को भी हम उसी मानसिकता से देखें कि वो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं। वो हमारी आत्मिक वृत्ति दूसरों के प्रति निरंतर बनी रहेगी तो धीरे धीरे हमारी परिवर्तन की जो गति है वो फास्ट होगी, तो हम साधारणता से उभर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा समय के लिए साधारणता से हम साधारणता का स्तर उसको छोड़कर अलौकिकता में आते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए, फिर बार बार साधारणता में चले जाते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं साधारणता भी नीचे गिराती है। साधारण स्थिति में स्थित रहना भी एक सूक्ष्म पाप ही कहेंगे, क्योंकि जब हमको शिक्षा मिल गई कि हमारा जीवन बदल गया, युग बदल गया, संकल्प बोल कर्म सब बदल गए, हम श्रेष्ठ आत्मा बन गए, इतनी ऊंची स्मृतियों से बाबा ने हम सबको सजाया सवारा, उसके बावजूद हम उन स्मृतियों से विस्मृत हो जाते हैं और साधारणता में चले जाते हैं, तो फिर हम स्वयं ही अपने अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस का एक भाव स्वयं के अंदर पैदा होता है। उसके अनुरूप ही फिर जीवन साधारणता से चलता रहता है। बाबा कहते हैं संसार की साधारणता से तुम बच्चे निकलकर अभी अलौकिक जीवन में आगे, ब्राह्मण जीवन में आगे। ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर साधारणता में जी रहे हैं तो तुम्हारे में और उनमें क्या अंतर है। तो आज के इस सत्र में, इस क्लास में हम देखेंगे बाबा के महावाक्य, फिर उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सोमान है, मैं आत्मिक स्मृति द्वारा कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आगे, कलयुग से निकल संगम युग पर आगे। जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म चलन साधारण लोगों के माफिक ना हो, वे हैं लौकिक और आप हो अलौकिक, तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है वह अलौकिक हैं। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर दो। जैसे कोई चीज़ सामने आती है तो चेक करते हो ना, ये खाने योग्य है, लेने योग्य है, अगर नहीं होती तो फिर नहीं लेते, छोड़ देते हैं। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी, फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारापन भी नहीं, बाप का प्यारा भी नहीं बन सकते। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं होता, नहीं हो रहा है, तो समझो कहाँ न्यारेपन में कमी है, कहाँ लगाव है। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से, स्थूल वस्तु से, स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज़ भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते ऐसे आप भी रहो तो अंतर क्या हुआ। तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, ना कि उनके संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसार में भी कहा जाता है, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। जो हम जीवन में कर्म करते हैं, हमें देखकर दूसरे को सीखते हैं। आजकल माँ बाप छोटे छोटे बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे बच्चे चरित्रवान बन जाएं, श्रेष्ठ संस्कारवान बन जाएं, लेकिन बच्चे फिर भी बनते नहीं हैं। कारण, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो उनके चरित्र को देखते हैं, बच्चे माँ बाप के चरित्र को देखते हैं। माता पिता का पहनावा, उनका बोलना चलना उठना जो होगा वो बच्चे उनके जीवन को पढ़ते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, जगदीश भाई जी कहा करते थे कि मनुष्य की पहचान तीन चीज़ों से होती है, गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार। गुफ्तार अर्थात गुफ्तगू, बोलना, जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारी भाषा शैली से पता चल जाता है कि हम किस कुल के हैं। वैसे भी कोई स्टेट का व्यक्ति अगर मिले आपस में बड़े सालों के बाद, तो सामने वाला सुनने वाला कह देता है कि आप फलानी स्टेट से हो, तो भाषा रग रग में समा जाती है। तो हमारे बोल ये भी हमारी पहचान कराते हैं कि हम किस घराने के हैं, किस कुल के हैं। हमारे बोल दर्शा देते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी कैसे होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, कुल कलंक कितनी बना, अर्थात हम ब्राह्मण जीवन में हैं और हमारे मुख से ऐसे वैसे बोल निकल जाएं, तो एक व्यक्ति के मुख से निकला हुआ बोल ही पूरे संस्थान को ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अगर एक व्यक्ति बदल जाता है और अन्य आत्माओं से मिलता है, तो उनको महसूस तो होती है कि कुछ तो इधर अच्छा बदलाव होता है। तो गुफ्तार अर्थात हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा है, विचार प्रस्तुत करने का तरीका कैसा है। कहा जाता है, अच्छा सेल्समैन वो होता है जो, पहले भी बताया था, कौन, जो गंजे को कंघी बेच देता है, जिसके ऊपर सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं हो और उसको कंघी बेच दो, उसको कहा जाता है अच्छा सेल्समैन। तो ऐसे ही हमारे जो विचार हैं, भले वो साधारण हैं, लेकिन उनको हम ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें कि सामने वाला उन विचारों को अपने आचरण में लाने के लिए विवश हो जाए, उन साधारण विचारों में भी इतनी अलौकिकता भर जाए, इतनी उनमें शांति भर जाए, इतने गुड वाइब्रेशन भर जाए कि सामने वाला भी उनको आचरण में लाने के लिए बाध्य हो जाए। तो हमारे बोल ये बनेंगे कैसे श्रेष्ठ, जब आत्मिक स्मृति रहेगी, क्योंकि आत्मिक स्मृति वास्तव में बहुत शक्तिशाली स्मृति है। आत्मिक स्मृति कहाँ की स्मृति है? परम धाम की स्मृतियाँ जो इस समय हम उनका अनुभव करते हैं। भले सत्ययुग त्रेता में भी आत्मिक स्मृति है, धुंधली सी है, लेकिन अभी हम पूरा 100% उसकी महसूसता करते हैं। वहाँ से फिर भी हमारी गिरती कला है, लेकिन अभी हमारी चढ़ती कला भी नहीं है। कौन सी है? उड़ती कला है। आत्मा समझने से एकदम बॉडी से डिटैच हो जाना, जिसको कहेंगे उड़ती कला। एक सेकंड में सोचा और डिटैच। और चढ़ती कला में चिंतन करने के बाद उड़ने का अनुभव करते हैं, उसको कहेंगे चढ़ती कला। और सोचा और स्वरूप बना, इसको कहेंगे उड़ती कला। तो ये आत्मिक स्मृति बहुत शक्तिशाली स्मृति है, जो हमारे बोल में पावर भर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना ज्ञान योग का बल होता है, उन आत्माओं के वचन भी दूसरों के दिल को भेद देते हैं, घायल कर देते हैं। जौहर भर जाता है उस वाणी में। जिस आत्मा में आत्मिक स्मृति में स्थित रहने की निरंतर वो स्मृति बनी रहती है, वो आत्मा के बोल भी शक्तिशाली, पावरफुल, अनुभव कराने वाले होते हैं, उड़ाने वाले होते हैं, न्यारा बनाने वाले होते हैं। तो हमारा गुफ्तगू कैसी है, ये हमको सारे दिन में चेक करना है कि हम सारे दिन में आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक वृत्ति में, आत्मिक दृष्टि में स्थित होकर संबंध संपर्क में आते हैं, तो क्या बोल हमारे उतने शक्तिशाली हैं। दूसरा है, हमारी रफ्तार कैसी है। रफ्तार अर्थात गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार। रफ्तार अर्थात चाल चलन, हमारी चाल चलन कैसी है। हम सभी चलती फिरती एक लाइब्रेरी हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल दिए हैं, तो हमारा जो जीवन है, एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। अर्थात जो हमारे मन के अंदर संकल्पों का एक प्रभाव बना रहता है, वो प्रैक्टिकल में वही हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सोच तो अच्छा अच्छा रहे हैं और बोल में साधारणता है, या फिर दूसरों के सामने हम अच्छा बनने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब हम अकेले में हैं, एकांत में हैं, या संगठन से अलग हैं, तो हमारे कुछ विचार और ही चलते जा रहे हैं, हमारे कर्म कुछ और ही हैं। नहीं, जो वास्तविक हम हैं वो हमारे चाल चलन से दिखाई देता है, चरित्र से दिखाई देता है। और चरित्र एक इमारत की तरह है, बिल्डिंग की तरह है। इसलिए प्रदर्शनियों में भी जब हम शुरू शुरू में आए, तो सभी ने प्रदर्शनियों में देखा होगा, एक चित्र दिखाते थे, उसमें दिखाते थे धन गया तो कुछ भी नहीं गया, तन गया तो भी थोड़ा गया, कुछ नहीं गया नहीं थोड़ा गया कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हमारा चरित्र एक खुली किताब की तरह है। हम बोलें ना बोलें, सामने वाले हमारे जीवन से बहुत कुछ पढ़ के चले जाते हैं। मधुवन में असंख्य आत्माएं आती जाती रहती हैं। कई बार हम सबने अनुभव में सुना और सुना के भी जाते हैं कि 3 दिन का जो शिविर करते हैं, उस शिविर में जो सुना वो सारा भूल जाता है उनको। और एक ब्राह्मण आत्मा ने अगर थोड़ी सी भी उनकी मदद कर दी, सेवा कर दी, वो जिंदगी भर भूलते नहीं हैं, और उस मदद की बदौलत ही उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल हम ज्ञान सुनाने से ही दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। नहीं, हमारा जीवन चलती फिरती एक प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, खुली किताब की तरह है। हम अपने चरित्र से दूसरों के चरित्र को बनाने के निमित्त हैं। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन सबको प्रभावित करते हैं। कल भी भूपेंद्र भाई जी बता रहे थे ना कि जरूरी हमको भागदौड़ के सेवा करनी है। एग्जाम्पल दिया था ब्रह्मा बाबा का, कभी कोई विदेश गए नहीं, गए वो यहाँ बैठे बैठे विश्व को परिवर्तन कर दिया। नेपाल गए थे, बोला श्रीलंका, ब्रह्मा बाबा के पहले बनने के बाद, पहले गए ब्रह्मा बाबा नहीं गए ना, वो तो दादा लेखराज जी गए थे। तो हम बैठे बैठे पूरे संसार को बदलने की, अपनी स्थिति को बनाने का अगर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक चलती फिरती प्रयोगशाला बन जाएगा और उससे हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी और अनेकों के जीवन को भी हम श्रेष्ठ बनाने का पुण्य कार्य कर सकते हैं। तो दूसरी बात है गुफ्तार, रफ्तार, गुफ्तार, रफ्तार, और तीसरा दस्तार अर्थात पहनावा। हमारा पहनावा क्या है, कैसा है, वो भी सामने वाले पहचान जाते हैं कि कौन सी स्टेट से है। अगर सिर पर गांधी टोपी लगाई हो तो पता चल जाता है कहाँ से आए हैं, है ना। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति है, पहनावा है, वो पता चल जाता है उनके पहनावे से कहाँ से हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थानी या विदेशी कल्चर, तो सबके पहनावे से पता चल जाता है कि कहाँ से है। तो हमारा पहनावा कैसा है, साधारण है, लेकिन इस साधारणता में बहुत बड़ी अलौकिकता है, पवित्रता समाई हुई है। हमारा पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे हमें देखकर हमारे पहनावे के बारे में सोचते रहें कि इसके जैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसके जैसे बाल होने चाहिए, इसके जैसे चलना चाहिए, इसके जैसे शूज होने चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी वस्तु के प्रति लगाव, ये भी हमारे पुरुषार्थ को रोक देता है, बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो हमें देखना है कहाँ कहाँ हमारी अटैचमेंट है। स्थूल रूप से भले अटैचमेंट नहीं है, लेकिन किसी को देखने से भी अगर हमारे विचार परिवर्तन होने लगते हैं तो वो भी हमारी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। भले सामने वाले पहनावे को देखकर देखते हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक साधारण पहनावा ही है, हम निरंतर उस साधारण पहनावे में श्रीमत के अनुकूल रहते हैं, लेकिन दूसरे के पहनावे को देखकर विचार चलना भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है, क्योंकि हम उस समय भूल जाते हैं कि सब आत्मा का अभिनय पार्ट अपना अपना है, सब एक सरीखे नहीं हो सकते, सभी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, पार्ट अपना अपना है। तो हमें पहनावा कैसा होना चाहिए वो भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार के साधना के पथ पर कई तरह के दृश्य हमारे सामने आएंगे, लेकिन उन सभी में हमें अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करने के लिए खुद ही अपने चिंतन को बढ़ाना है। एक निरंतर चिंतनशील स्थिति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप चिंतन करने से थोड़ा भी परे हो जाते हैं तो जो पहले के हमारे जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, पुराने विचार हैं, पुराने संस्कार हैं, उस चिंतन में खो जाते हैं, क्योंकि मन तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, बिना सोचे मन तो रहेगा ही नहीं। तो हमें निरंतर एक आत्मिक स्मृति में स्थित रहने का अभ्यास करके कर्म क्षेत्र पर कर्म करने हैं। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, अपना टाइटल याद है, कौन सा टाइटल याद कराया था, कर्मयोगी, कर्मयोगी टाइटल याद है। सो सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा, संतुलन, वायलेंस दोनों का। अगर सो सेवा करते हैं विश्व नहीं करते कि नहीं करते हैं तो भी अलबेलेपन हो जाते हैं, सो को छोड़ देते हैं विश्व की करते हैं तो भी अलबेलेपन हो जाते हैं, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमको शक्तिशाली बनाती हैं। तो ऐसे चिंतनशील बने रहेंगे तो आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक वृत्ति में स्थित रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है और ये मुश्किल से मुश्किल भी है। अच्छा ठीक है, ठीक सुन रहे आप सभी, सहज तो सहज भी है, नहीं वो अंग्रेजी में बोला, हिंदी में फ़र्क तो है ना। तो सहज तो सहज भी है और डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट भी है। अगर हम निरंतर जागरूक रहते हैं इस साधना के पथ पर तो सहज आइए। जैसे हम विस्मृत हो जाते हैं तो मन भारी भारी होने लगता है, इसलिए निरंतर स्मृतियों के सागर में हमको डूबे रहना चाहिए। ऐसी ऊंची ऊंची स्मृतियां हैं, अगर हम अकेले में बैठ के पढ़ें एक स्टूडेंट लाइफ की तरह, तो वो स्मृतियाँ हमें संसार में जो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हमें खींचते रहते हैं, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में जब आते हैं, तो उन सब से हम न्यारा सहज रूप से रह सकते हैं। बाबा ने कहा ना, संग का प्रभाव, हमारे संग का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ना चाहिए, ना कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। घर में रहते हैं, बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे भी साधारणता में जी रहे हो और वो भी साधारणता में है, तो इसमें अंतर क्या है? विशेषता होनी चाहिए। कल का स्लोगन था विशेषता का, कौन सा स्लोगन था? निश्चय बुद्धि दृढ़ता, पूरा पूरा बोलो, ठीक बोला थोड़ा और। और बाबा से निश्चय बुद्धि रहेंगे तो दृढ़ता से भरपूर रहेंगे। बाप को प्रत्यक्ष, बाप हर संकल्प में बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दृढ़ता की विशेषता होनी चाहिए। निमित्त वही बन सकते हैं जिनमें दृढ़ता में विशेषता है। तो साधारणता से हम निकल आए, साधारणता के संसार को हमने छोड़ दिया, हमारे जीवन अब विशेषताओं से भर गया है। तो जो हमें ये प्रसाद के रूप में, प्रभु प्रसाद के रूप में विशेषताएं हमें हमारे जीवन में मिली हैं, तो इन विशेषताओं का हमको हमेशा एक चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि उन विशेषताओं को हम बढ़ाना है, उन विशेषताओं का हमें अपने जीवन को श्रृंगारित करके रखना है। जब तक हमने स्वयं को श्रृंगारा नहीं, दूसरों को श्रृंगार भी नहीं कर सकते। तो जो भी हमको बाबा ने विशेषताएं दी हैं, उनकी भी निरंतर सूची हमारे आंखों के सामने घूमती रहनी चाहिए। अपनी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। विशेषताएं बढ़ेंगी तब जब हम उन विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, और विशेषताओं को कार्य में लगाने के हम ब्राह्मणों को बहुत सारे मौके मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते चांस नहीं कभी छोड़ना, चांस मिलता है तो चांसलर बन जाओ, अचानक का चांस मिलता है तो अचानक ही चौका लगा दो, आज नहीं हुआ, बार बार ही होता रहता है। क्योंकि जब हमको ऐसा चांस मिलता है तो हम एकदम निरसंकल्प हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, काम उसका है, ऊपर वाले का जो करना होगा कराएगा, सामने वाले को जो नसीब होगा उन नसीब बनाने के लिए बाबा को जो कराना करा लेगा। तो हमको जो भी चांस मिलता है, चाहे वो तन की सेवा है, चाहे वो धन की सेवा है, चाहे वो मन की सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा में हमको चांस नहीं खोना है। तबीयत ठीक हो या नहीं हो, कुछ दिन पहले, कुछ दिन अभी थोड़ा समय पहले हमको बोला आपको मंच संचालन करना है, और सिर में इतना चक्कर आ रहा था, घूम रहा था, और 10 मिनट हमको पहले बोला गया, तो हमने बोला चलो ठीक है। तो संचालन करते करते भी इतना सिर दर्द कर रहा था कि बात मत पूछो, फिर भी बाबा के ऊपर छोड़ के जो करना था वो कर दिया। तो हमने देखा बाद में सिर की दर्द भी गायब हो गई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसने जिस कार्य के हमको निमित्त बनाया तो उसने सोच समझ कर ही तो बनाया है ना, कि यह तबीयत खराब होने पर भी ये बच्चे मेरे काम में आ सकते हैं। तो हमको इस ब्राह्मण जीवन में बहानेबाजी नहीं देनी, अर्थात हम अपने चांस को एक बार खो देते हैं तो हमने अपने मन के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार कर दिया। एक बार मना करने की आदत डाल दी तो बार बार मना करने का संकल्प आएगा। एक जैसे हम एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक ये सेवा का भी कंफर्ट जोन है, या ये जो हम सबको जो होमवर्क मिलता है छोड़ देते हैं कि अब भी हमको मिला ना, एक महीने बाद टर्न आएगा, ठीक है जब देखा जाएगा। नहीं, अपने मन को धक्का देने के लिए भी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना स्वयं को। सबसे बड़ा काम कौन सा है? चिंतन करना। बड़ा टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है, इसके लिए हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। जब अपना कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बाबा भी मदद कैसे करेंगे? जब बाबा ने हमको कहा है कि एक कदम आप हिम्मत का रखो तो मैं हजारों कदम मदद देने के लिए बंधा हुआ हूं, तो हमने हिम्मत का हाथ ही खींच लिया पीछे, और वो हजारों हाथ मदद के लिए हमारे आगे खड़ा है और हम एक हाथ भी नहीं दे रहे उसको, तो कैसे वो मदद करेगा? इसलिए किसी भी सूरत में हमको मना नहीं करना है, हाँ हाँ जी करना है। हाँ जी में एक गुड वाइब्रेशन है, पॉजिटिव ऊर्जा भरी हुई है, और जब हम हाँ जी करते हैं और बाबा की याद में उस कार्य को संपादित करने के लिए संपन्न करने के लिए जब हम क्षेत्र में उतर जाते हैं तो अनेक आत्माओं की दुआएं जो मिलती हैं वो एक दवाई का काम करती हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन सूक्ष्म में माया आने का भी बड़े चांस रहते हैं कि देखा मैंने कर लिया ना, अचानक का पाठ मिला दो हाँ, तो वो भी हमको साथ साथ में सूक्ष्म अपने पर एक पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। वो भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं तो एवरेडी हूँ, हमेशा जब होमवर्क मिलता तो कर देता हूँ, जैसे भी यहाँ कहा तो तैयार ही नहीं हुए, कर देना चाहिए तुरंत। तो जब भी हमको कोई भी काम मिलता है तुरंत बैठ जाओ, लेकिन उसके लिए हमको पहले से लंबे समय से उसका अभ्यास भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महा करके और बैठ भी जाए, नहीं, वो भी गड़बड़ हो जाता है, फिर सोचेंगे अभी आप बोलो, नहीं ऐसा भी नहीं। तो हमको निरंतर पहले से सतत प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा तीन बातों के लिए हमको हमेशा सुझाव करते रहते हैं, अचानक, एवरेडी और बहुत काल का अभ्यास। इसलिए यहाँ का पहला सेंटेंस भी क्या आता है इन महावाक्यों का, बाबा के महावाक्यों का, सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, सदा हर संकल्प श्रेष्ठ रहता है, हर बोल श्रेष्ठ है, हर कर्म श्रेष्ठ है। आप बच्चे साधारणता के जीवन से निकल आए, युग बदल गया, जीवन बदल गया, तो जब युग बदल गया, जीवन बदल गया, तो हमारा धर्म कर्म भी बदल गया, हमारा सोचने का तरीका थॉट सिस्टम भी चेंज हो गया, हमारी दृष्टि चेंज होगी, हमारी वृत्ति चेंज होगी, हमारा पहनावा चेंज हो गया, हमारा रहन सहन सब चेंज हो गया। तो देखना है छोटे छोटे जो बाबा के महावाक्य हो, अगर उन पर गौर हम करें, गहराई से उन पर चिंतन करें, तो बदलाव की प्रक्रिया अपने आप ही आरंभ हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, स्वतः हो जाती है। तो उन पर हमको चिंतन करने का पहले से अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। अभी आज हम बड़े भाई बहनों की क्लासेस सुनते हैं तो वो एक दिन से थोड़ा नहीं ऐसे हुए, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बोले आप तो बहुत भाग्यशाली, आपका चिंतन चलता है, कोई भाग्यशाली नहीं है, भाग्य तो बनाना पड़ता है। भगवान ने, बाबा ने आकर हमको भाग्य की कलम हमारे हाथ में दी है, लेकिन उस कलम को हमने बंद करके रख दिया साइड में, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए उस कलम का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे भाग्य बनेगा। हर आत्मा अपने अपने भाग्यों को बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी स्पीड से है, कोई किसी स्पीड से है, कोई एकदम निरंतर सुजाग है, एक्टिव है, अलर्ट मोड पर रहता है, और कोई कभी कभी अलबेलेपन के डल्लप के तकिए में चले जाते हैं। तो हमको देखना है कि निरंतर चिंतनशील रहना। हाँ, इस चिंतन के रास्ते में भी कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कभी मन करेगा अभी चिंतन करना नहीं है, छोड़ो चक्कर को, रोज करते रहे कौन करता रहेगा, इतनी क्लासें हो गई हैं, हजारों लाखों संख्या की तादाद में क्लासेस सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, सब कुछ तो बता दिया, हमें क्या करना है। नहीं, जो करेगा सो पाएगा, जिन्होंने क्लासें कराई हैं उन्होंने अपने लिए अपने भाग्य का निर्माण किया, हमें अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए अपने चिंतन की धारा को बढ़ाना है। क्योंकि जो भी हम चिंतन करते हैं उस चिंतन के आधार पर से जो हमारे वाइब्रेशनों की उत्पत्ति जो होती है, वो उत्पत्ति वातावरण में एक शक्तिशाली वातावरण का, शक्तिशाली एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। इसलिए संकल्पों का बड़ा महत्व है। तो संकल्पों को हमको पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, और तब बनेंगे जब हम अपने चिंतन की धारा को निरंतर उस दिशा में जाते रहेंगे। तो बाबा के महावाक्य हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं आत्मिक स्मृति द्वारा कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखना है। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आगे, साधारणता से हम सब मर गए, अब नया जीवन है, नए उमंगे हैं, नई सोच, नया विचार, कलयुग से निकल गए, संगम युग पर आगे, टॉप पॉइंट पर खड़े हैं। संगम कहाँ है? टॉप पर है, बाकी सारे युग सारे नीचे हैं। जीवन बदल गया, युग बदल गया, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया, हमारी दृष्टि, वृत्ति, सोच, सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म चलन साधारण लोगों के माफिक ना हो, वे हैं लौकिक और आप हो अलौकिक। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं, आप कौन हो? अल्लाह लोग हो, है ना, होली होली हंस हो। हजारों आत्माओं के बीच में कोई भी एक ब्राह्मण जाता है तो पता चल जाता है कैसा है, उसके चाल चलन से सब आकर्षित होते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे अलौकिक हो, अल्लाह लोग हो, तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे, लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण हैं वा अलौकिक हैं। साधारण हैं तो साधारण को चेक करके चेंज कर दो। जैसे कोई चीज़ सामने आती है तो चेक करते हो ना, खाने योग्य है, लेने योग्य है, अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो उस चीज़ को। अगर खा लें तो नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर हमने अपने जीवन को साधारणता में ही रहने दिया तो कितना बड़ा नुकसान है। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो, साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी, फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग उसमें मिक्स हो जाएंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यार भी नहीं मिलेगा, वो महसूस नहीं होगा, तो बाप का प्यार भी नहीं मिलेगा। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है तो समझो कहाँ न्यारेपन में कमी है। कहीं ना कहीं हमारे मन की जंजीरें, मन की सूक्ष्म रस्सियाँ जुड़ी हुई हैं जो बार बार बांह खींच रही हैं, तो देखना, उसकी जाँच करनी है, उनको काट देना है। तो समझो कहाँ न्यारेपन में कमी है, कहाँ लगाव है। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता है, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंधों से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। तो देखना है सारे, हमने अपने आसपास में देखना है कौन सी ऐसी वस्तु है जो बार बार हमको खींचती रहती है, निकाल के दान कर देनी है। नहीं मिलेगा तो दे के बैठे हुए हैं इधर, दान कर देना इधर आके। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन वस्तु में लगान हो, किसमें, खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में। कोई छोटी चीज़ भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है, इसलिए कई बार क्या कहते हैं संसार में भी, अंत में जब शरीर नहीं छोड़ते हैं तो कहते हैं हमको गोलगप्पे खिला दो, है ना, कि ऐसे सुनते रहते हैं ना। तो वो देखो छोटा सा गोलगप्पा और सारा जीवन ही को गोल गोल बना दिया उसने एक दिन। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते ऐसे आप भी रहो तो अंतर क्या हुआ। तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है, चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, ये लगता बाबा माताओं से मिल रहे हैं, सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो, बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। कैसी आत्मा, बहुरूपी आत्मा है। बहुरूपी आत्मा मना उस समय बाबा ने बोला परवश है बेचारी, लेकिन उसको भी अनादि रूप में देखो, लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञानवान आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, तुम अपनी शुभ भावना से उसको बदल के दिखाओ, तब तो कोई मानेगा कि हाँ हमने भगवान के ज्ञान को अर्जित किया है। अगर हमने ज्ञान लिया है और बदल के नहीं दिखाएंगे तो उनके और उसमें क्या फर्क पड़ता है। संसार में बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो बिना ज्ञान के हमारे से बहुत अच्छी हैं, कई गुणा अच्छी हैं, बने बनाए जैसे देवी देवता होते हैं वो। तो मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए और खुद को हम बदलते नहीं हैं। दूसरों को अच्छा बनाने की अपेक्षा रखते हैं और स्वयं को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप नहीं कर सकते हो। संघ का रंग आपका लगना चाहिए, ना कि उनों के संघ का रंग। तो हमारे संघ का रंग कैसे लगेगा, जब हम एक के संग में हमेशा रंगे रहेंगे। तो देखना उससे हमको कौन कौन से रंग मिलते हैं, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग। एक लिस्ट बनानी है कि बाबा के कितने रंग हैं, ज्ञान गुण शक्तियां नेक जाने हैं, दुआएं पवित्रता है। तो ऐसे एक रंगों की सूची बनानी है और उन रंगों से स्वयं को इतना रंगीन बना देना है कि दूसरों को भी हमारे संग का रंग लग जाए ना, हो हमें उन्हें उनके संग का रंग हमें नहीं लगे, बल्कि हमारे संग का रंग और हमारे संग का भी रंग नहीं। बाबा के संग के रंग में उनको रंग डालें। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरा पाप प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। पिछले तो पिछले संडे की मुरली में था ना, क्या टाइटल था मुरली का? डैश आत्मा मनो डैश आत्मा नहीं, भावना केवल भावना नहीं, ज्ञान युक्त स्नेह युक्त आत्मा ही बनो, केवल भावना नहीं, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है वो भी ज्ञानी है, लेकिन वो उसके आगे अ लगा हुआ है थोड़ा, वो अ को हटाना है, और वो अ को हटाने के लिए पहले अपना अ हटाना है। मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है, अर्थात पहले हमें स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी पड़ेगी। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना भी अर्जी हमें सुनाते रहें प्रभाव कैसे पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो हमारी होगी उसका फल मिलेगा उनको, उससे वो बदलेंगे। तो ये 14 अप्रैल 1983 की मुरली से लिए गए बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, तो बार बार इसका अनुसरण करने के लिए इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। एक बार पढ़ने से कुछ हाथ में नहीं आता है, पढ़ते रहेंगे अपने मन को इसमें डुबोते रहेंगे, स्मृतियों के सागर में हम अपने आप को डुबो के रखेंगे, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन का हमको स्वयं आभास होने लगेगा, नहीं तो जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। जीवन में बदलाव की जो प्रक्रिया जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए वो महसूस नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।